कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कान कुजन की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ यात्रा के उपलक्ष में शास्त्री नगर के इस ग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की भगवत वाणी भगवत गीता के अमृत का प्रभाव उसके चौथे दिन के सायंकाल के सत्संग में आपका स्वागत है। छठे अध्याय भगवत गीता का छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का वर्णन किया है और ध्यान योग अगर एक श्लोक में भगवत गीता से उद्धृत किया जाए तो वो है योगी नाम अपि सर्वेशां मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम समे युक्तत्मो मतः। युक्तत्मो मतः, युक्तत्मो का मतलब है युक्त युक्ततर युक्तम, जैसे होता है अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट, तो वो सबसे श्रेष्ठ है जो योगियों में वो श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा में श्रद्धा से मेरा भजन करता है भजन। हाँ योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते श्रद्धावान यो भजते माम भजते माम, तो ये है ध्यान योग। इसको अष्टांग योग भी कहते हैं, इसके आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ अंग हैं। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो ध्यान योग से प्राप्त होता है वो तो आपको मुझ में मन आसक्त करने में भी मिल जाएगा। तो भक्ति योग का मार्ग भी आपको मुझसे मिलाने के लिए उपलब्ध है। और पहली बार भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय में कह दिया यो माम प्रपद्यन्ते, मतलब जो मेरा शरण लेता है। तो सीधा मेरा शरण लेता है पहली बार 7वें अध्याय में कहा है, तो जो भक्ति का सूचक है। तो 8वें अध्याय में ध्यान योग और भक्ति योग दोनों में सुलभ कौन सा है, इसकी तुलना की गई। और 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में जो 6-8वें अध्याय में सुबह ये सत्संग हो चुका है, अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और ये अधियज्ञ कहां शरीर में रहता है। और फिर ये प्रश्न पूछा कि अंत समय जो संयमी है वो आपको कैसे पाता है। तो 8वें अध्याय में इसका भगवान ने 2 श्लोकों में उत्तर दे दिया 6 प्रश्नों का। ब्रह्म है, अक्षर है, उसको ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि भगवान को परब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म हो गया मुक्त जीव। बोला अध्यात्म किसको कहते हैं, उस अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं ब्रह्म हूं, भगवान पर ब्रह्म है, ये ब्रह्म की परिभाषा है। यहां तो उसका स्वभाव क्या है, अध्यात्म क्या है, बोला उस शुद्ध पवित्र जीव का स्वभाव सच्चिदानंद। और प्रेम और सेवा करना उसका नित्य स्वभाव है, जे वीर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये उसका स्वभाव है। इसके ऊपर सुबह विस्तार से चर्चा हुई है। कर्म क्या है, जिसको करने से उसके फल भोगने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़े उसको कर्म कहते हैं। कर्म करेंगे तो उसका फल उत्पन्न होगा, तो उस फल भोगने के लिए फिर एक शरीर लेना पड़ेगा। भूत भवा, भूत भाव उद्भव कर कर्म संगित। तो अधिभूत क्या है, जो क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, जो क्षर जगत है, जो बदल रहा है, उसको कहते हैं अधिभूत। तो अधिदेव कौन है, बोले भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता और सारा ये ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो अधिदेव है। अधियज्ञ कौन है, भगवान ने कहा मैं अधियज्ञ हूं, यज्ञ का अधिपति मैं हूं। आप कहां रहते हैं भगवान, मैं सबके हृदय में रहता हूं। बाकी सारे का सारा 8वां अध्याय इस 7वें प्रश्न के उत्तर में है कि अंत समय आपकी प्राप्ति कैसे हो भगवान। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रीला प्रभुपाद ने परम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति अंत समय, संसार से जाने वाले समय, शरीर छोड़ने के समय भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो इसके उत्तर में 1 श्लोक में भगवान तो सीधा उत्तर दिया, अंत समय जो मेरा अनुस्मरण करता है, माम अनुस्मरण, और अनुस्मरण के ऊपर सुबह विशेष ये बताया गया था कि स्मरण नहीं है, अनुस्मरण का मतलब जैसे पहले परंपरागत आचार्यों ने स्मरण किया है, जो प्रमाणित परंपरा से स्मरण की विधि है, जो मंत्र वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने जिनका साक्षात्कार किया है, ऐसा नहीं कोई भी अपने मन से कुछ स्मरण करे और भगवान की प्राप्ति नहीं, अनुस्मरण, वो भगवान कहते निश्चित मेरे को प्राप्त होता है। और फिर सामान्य नियम बताते हैं, जो भी जहां भी यम वापी सुमरम भाव, मगर भाव से मेरा स्मरण करता है, त्यजते अंते कलेवरम, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, जिस भाव में उसका ध्यान रहता है उसी को प्राप्त करता है। तो इसको एक शब्द में कहते हैं अंतमति सोगति, अंत समय जिसका ध्यान करेंगे वही दूसरे जन्म में भाव प्राप्त होगा। मरते समय स्त्री का भाव आ गया तो स्त्री का शरीर मिलेगा, पुरुष का भाव आया तो पुरुष का शरीर मिलेगा। इसका सुबह उदाहरण दिया था पुरंजन, चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत में, मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया तो दूसरे जन्म में स्त्री हो गई विदर्भी, और जो पुरंजनी थी वो पुरुष हो गया मलयध्वज। महाराज भरत ने मरते समय हिरण का चिंतन किया तो हिरण के शरीर में जाना पड़ गया। तो अंत समय किस चीज का चिंतन है वही गति होती है, अथवा वही दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अंत समय अपने आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन आ जाए ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने एक महावाक्य गीता का बता दिया, सातवां श्लोक, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुसमर युद्ध च, इसलिए हर समय मेरा परंपरागत अनुस्मरण करो और अपना कर्तव्य कार्य करो, जो भी आपका काम है वो करो। बोला मैं सुमरण आपका करूं और कार्य अपना करूं, किससे सुमरण करूं और किससे कार्य करूं? बोला कार्य करो शरीर से और सुमरण करो मन और बुद्धि से। इसलिए मैं अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि करो मुझे अर्पित, और ऐसे तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके जैसे अर्जुन ने किया है, अपने रथ का लगाम भगवान के हाथ में दे दिया, ये हुआ मन भगवान को अर्पण किया, और भगवान को बिठा दिया सारथी के स्थान पे, ये हुआ बुद्धि में भगवान को निवास करा दिया। अब अर्जुन क्या कर रहा है? केवल तीर चला रहा है। अब तो अर्जुन माला भी नहीं जप रहा है, भगवान की सेवा में भगवान को समर्पण करके सेवा कर रहा है, और अर्जुन भगवान का चिंता कर रहे हैं, अर्जुन को चिंता नहीं है। अब भगवान अर्जुन की रक्षा की चिंता कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे। ये महावाक्य आगे भी अंतिम श्लोक के साथ आएगा, तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, इसलिए हर समय अर्जुन तुम मुझसे जुड़े रहो सेवा, सेवा के माध्यम से योग युक्तो भव अर्जुन, ये दोबारा आएगा। अब आठवें श्लोक से लेके तेरहवें श्लोक तक जो ध्यान योग का मार्ग है, और वो ध्यान योग भक्ति से मिश्रित मिला हुआ है, इसको कहते हैं। अब यहां तीन शब्द आप सुन लीजिए, एक भक्ति को कहते हैं केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांतिकी भक्ति का मतलब 100% भगवान की स्वतंत्र भक्ति जो आत्मा का स्वरूप है, जो गुण अतीत है, जो स्वतंत्र है, वो भक्ति करने वाले तो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाते। दूसरी भक्ति होती है मिश्रित भक्ति, मिली हुई भक्ति, जुड़ी हुई भक्ति। किससे जुड़ी हुई भक्ति? कर्म से जुड़ी हुई भक्ति, ज्ञान से मिली हुई भक्ति, और योग की मिलावट वाली भक्ति। और मिलावट वाली भक्ति के दो विभाग हैं, एक को कहते हैं प्रधानी भूता भक्ति, एक को कहते हैं गुणी भूता। प्रधानी भूता में भक्ति प्रधान है, कर्म अथवा ज्ञान अथवा योग गुण गुणी है, थोड़ा है। जैसे 70-80% भक्ति है, 15-20% कर्म है, तो उसको कहते प्रधानाभूति कर्म मिश्रित भक्ति। ऐसे प्रधानाभूति ज्ञान मिश्रित भक्ति जो सातवें अध्याय में जिस ज्ञानी का वर्णन है, जिसको भगवान अपनी आत्मा मानते हैं, अपने के समान मानते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है प्रधानी भूता ज्ञान भक्ति, जिसमें 90% तो भक्ति है, केवल 10% ज्ञान का अभी अंश उसमें स्वभाव के कारण रहा हुआ है। वो अगर केवला भक्ति हो गई तो भगवत धाम नहीं, सिर्फ प्रधानी मिश्रित भक्ति रही तो ज्ञानी का लक्ष्य हो जाएगा ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति। और प्रधानी योग है, ध्यान प्रधान है, उसमें ध्यान ध्यान भक्ति प्रधान है और ध्यान थोड़ा सा रहा है 15-20-25%, तो प्रधानी भूता भक्ति। और वो अगर केवला नहीं बनी तो इसका शरीर छोड़ते समय ऐसी भक्ति रही तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, जहां शांत भाव से वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो ये जो श्लोक है 8-13, ये प्रधानी भूति योग मिश्रित भक्ति है। ये 6 अध्याय का यहां तुलना की जा रही है भक्ति के साथ। अच्छा, एक बात इसके साथ और, अगर भक्ति का कुछ अंश कर्म में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो कोई फल नहीं। फल है भक्ति के कारण, थोड़ी सी भक्ति होगी तो कर्म अपना फल देगा, ज्ञान अपना फल देगा और योग अपना फल देगा, लेकिन भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति है चिंतामणि और ज्ञान है दीप, जिसमें बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, पुस्तक भी चाहिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए, बुद्धि भी चाहिए। तो ये परतंत्र है और भक्ति स्वतंत्र है। और ध्यान में मन का निरोध होता है और मन भौतिक वस्तु है, और भक्ति हृदय का विषय है, जिसमें भगवान का निवास है और आत्मा का निवास है। तो ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है भक्ति। हम साधक हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल नहीं हो, तीनों गुणों से ऊपर नहीं हो, लेकिन भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है। सो अभी योग मिश्रित भक्ति का वर्णन अब इन श्लोकों में आइए सुनते हैं। 8वें श्लोक का पाठ करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसान अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन। तो योग में क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, और ये मन को वश में करने के लिए 6 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा था, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न सक्रियते। अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास करो योग से जुड़कर, चेतसा न अन्य गामिना, आपकी चेतना और कहीं नहीं जाए। कहां होनी चाहिए? अपने हृदय में परमात्मा की, किसके ऊपर केंद्रित होनी चाहिए चेतना? तब कहते परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष दिव्य है। यहां सीधा भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं मेरे ऊपर चेतना तुम्हारी केंद्रित करो, यहां कहते हैं परम पुरुष जो दिव्य है। ऐसे क्यों कहते हैं? सीधा मैं अपने लिए क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये जो विषय है ये ध्यान योग का है, और ध्यान योगी को इतना तो पता है कि हृदय में परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन उसको ये भी पता है कि अंदर ये चतुर्भुज रूप में विराजमान होता है, लेकिन वो परमात्मा क्या है, कौन है, कहां से आता है, ये उसको पूरा ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए उसके लिए भगवान ने, क्योंकि सामने वाला योग का अध्ययन करने वाला है, तो उसके लिए पूर्व ऐसे भगवान भगवत गीता में कहीं सीधा अपना न कहकर कहेंगे तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा के शरण में जाओ। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां साधक जो है वो साधना, उसकी साधना ध्यान की है। जैसे आपको भागवत से उदाहरण दें कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। अत्रि ऋषि, वो ध्यान में कह रहा है जगदीश आपका मैं ध्यान कर रहा हूं, हे जगदीश भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, और उसके सामने गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु, नंदी के ऊपर शंकर जी और हंस के ऊपर ब्रह्मा जी चढ़ के आ गए। वो अत्रि कहता है मैं जगदीश को बुलाया, आप तीन क्यों आ गए? बोला हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, ये जगत का मैं सृष्टि करता हूं, ब्रह्मा जी कहता है, और भगवान विष्णु कहते हैं मैं पालन करता हूं, और शंकर जी कहते हैं मैं संहार करता हूं, हम तीनों जगत के ईश्वर हैं। अब वो अत्रि को यह निश्चित नहीं था कि ईश्वर कौन है, जगदीश कौन है, वो तो तीनों आ गए। कहा आप तीनों ही हैं, तो मेरे को तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो तीनों ने अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय पुत्र हुआ, शंकर जी के अंश से दुर्वासा पुत्र हुआ, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पुत्र हुआ। तो ये अत्रि और अनुसुईया के घर में भगवान तीनों गुण अवतार प्रकट हुए। तो इतने बड़े ऋषियों को भगवान का ध्यान अपने आप नहीं हो सकता है, तो इसलिए ध्यान योगी ज्यादा से ज्यादा चतुर्भुज रूप में परमात्मा, और परमात्मा कौन है? बोला खीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, खीरो दक्षाई विष्णु, खीर सागर में शयन करने वाला विष्णु परमात्मा है। और वो परमात्मा सबसे छोटा है अणु, और दूसरा विष्णु है बड़ा महान महाविष्णु, जिसके रोम कोपों से ब्रह्मांड अनंत अनंत कोटि निकलते हैं। तो ये जो बात है ये उन योगियों को ध्यान में पता नहीं होता है, इसलिए भगवान ने यहां कह दिया कि परम पुरुष दिव्य का चिंतन करो। और उसमें एक बात और, याति पार्थ अनुचिंतन, हे अर्जुन हे प्रथा पुत्र, वो जो चिंतन हो ना अनुचिंतन, जैसे गुरुजनों ने बताया है, वो निरंतर होना चाहिए। ऐसा उदाहरण अगर आपको चाहिए तो ये उदाहरण नारद जी का है भागवत में। नारद जी को भक्ति वेदांत ने चतुर्मास में दिव्य ज्ञान दिया, अपना शेष उचिष्ट प्रसाद दिया, और उनके जाते ही नारद जी की मां को सांप ने काटा और माता का देहांत हो गया, और उस माता के 5 वर्ष के बालक, नारद कहता है भगवान आपका अनुग्रह है, मेरी मां को बहुत मुझे पालन करने की चिंता थी, और बिचारी के पास कुछ नहीं था, अच्छा किया कि उसको आपने अपने पास बुला लिया। इतने छोटे बालक के माता के मृत्यु के ऊपर भगवान का करुणा और कृपा मान के और भगवान को प्रणाम करता है, ये है संतों के संग से धीरज कितना आता है साधक को। और नारद कहते हैं मैं निकल पड़ा शहरों से होता हुआ, जंगलों से होता हुआ, सरोवरों के किनारे से गुजरता हुआ, नदी में स्नान करके और पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और जैसे उन्होंने मुझे बताया अनुचिंतन, वहां भी अनुचिंतन शब्द है, जैसे मुझे वो मेरे गुरुजनों ने बताया था, मैंने ध्यान किया और मेरे हृदय में भगवान का दर्शन हो गया, और साक्षात भगवान का दर्शन किया और बड़ा मुझे आनंद आया, और फिर वो दर्शन एकदम लुप्त हो गया, नारद जी कहते हैं, और मैं छटपटाया मैंने फिर आचमन किया, फिर मैं स्नान किया, फिर मैंने वही मंत्र उच्चारण किए, फिर दर्शन हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, हमारे प्रयास से नहीं। किसी भी युक्ति यंत्र से भगवान नहीं, अपनी इच्छा से। और तब नारद को केवल भगवान का ध्वनि सुनाई दी, आकाशवाणी, नारद अभी तक पक्के नहीं हो पूरे, कुछ थोड़ा सा मैल बच गया है अंदर, और कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है। अब ये कल्प ब्रह्मा जी का पूरा होगा, तब आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो भगवान प्रकट हुए नारद के हृदय में अनुचिंतन करने से। तो ऐसे अनुचिंतन करना चाहिए, ये बताया साधन। अब आगे बताते हैं, आगे के श्लोक को पढ़िए, आइए। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरण्यां समन समृदय सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णम तमस प्रस्ताद। किसका अनुचिंतन करें? बोला कविम, जो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। पुराणम, जो सबसे आदि पुरुष है। पुराणम मतलब पुराना, सबसे पुराना आदि पुरुष। बोला पुराना हो गया, थक गया होगा, अब चल भी नहीं सकता। बोला नहीं, अनुशासितम, सबको अनुशासन में रखता है, वो सबका ईश्वर है, परम ईश्वर है, सबको अनुशासन में रखता है। अनोरण्य साम, छोटे से छोटा है, एक छोटी सी चोटी के अंदर भी परमात्मा बैठा है। एक कीटाणु जो आंखों से दिखता नहीं है, उसमें भी परमात्मा बैठा है। और इतना बड़ा है कि उसके रोम कोपों से पूरा ब्रह्मांड निकल आता है। महाविष्णु बड़े से बड़ा है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा छोटे से छोटा, अणु से अणु है। और परमाणु तो उस कैसे है, अणोरण्यासमनुसमृदय, जो छोटे से छोटा है, हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, उसका अनुस्मरण करना चाहिए। और क्या उसकी विशेषता है? सर्वस्य धातारम, सबका धाता है। धाता कहते हैं मां को, जो पालन पोषण करती है। धाता कहते हैं पालन पोषण करने वाले, धाता कहते हैं दूध पिलाने वाले को। माता को धात्री बोलते हैं, धात्री मतलब दूध पिलाने वाली। पालन पोषण, सबका पालन पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। धातारम अचिंत्य रूपम, हम अपने भौतिक इंद्रियों से उसके रूप, उसका रूप है, लेकिन हमारी भौतिक इंद्रियों से उसका चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिव्य चिन्मय रूप है, और हमारी इंद्रियां भौतिक है, तो उसका चिंतन कैसे करेंगी? तो विषय उस बारे कुछ तो बताओ, कैसे? बोला आदित्य वर्णम, आदित्य कहते हैं वैसे सूर्य को, आदित्य कहते हैं प्रकाश को, वो तो प्रकाशमय, उसके अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि ब्रह्म ज्योति उसके शरीर की कांति है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात, तमस का मतलब अंधकार से, परस्तात का मतलब परे है। जो ये भौतिक जगत जो अंधकारमय है, उससे परे है, उसका ध्यान करो, उसका अनुसमरण करो। और आगे कहते हैं, ये श्लोक पढ़िए। अब ये ध्यान की विधि बता रहे हैं, अब अंत समय की बात करते हैं, पढ़िए। प्रयाण काले मनसा अचले ना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले अंत समय मनसा अचले न मन अचल हो, इधर उधर भटके नहीं। जैसे कहते हैं हवा में दीपक की लौ भटकती है, आप उसके ऊपर जैसे वो एक शीशे का गोला लगा देते हैं ताकि उसकी लौ दिए की भटके नहीं, उसको बोलते हैं मन चंचल नहीं हो अचल, एकाग्र मन से, एकाग्र मन से भक्ति युक्त हो, भक्ति से भरकर, भक्ति को जीवन में जोड़कर, योग बले न, और योग के बल से, कौन से योग के, अष्टांग ध्यान योग के बल से। मन को अचल कैसे करेंगे, योग के बल से, और भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, भक्ति से। ये हो गई मिश्रित भक्ति, ये मिलावट वाली भक्ति हो गई, दोनों आ गया। अब करें क्या, ब्रवोर मध्य प्राणम आवेश, अपने प्राण को दोनों भ्रुवों के बीच में, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं, ये जो योग है इसको षड चक्कर योग कहते हैं, छह चक्कर है हमारे शरीर में, नीचे का मूला जो मूलाधार चक्कर से ले गए और आज्ञा चक्कर तक, और इन चक्रों में क्या होता है, प्राण हमारे, ये जो सांस लेते हैं प्राण, ये प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं, और ये प्राण जितना ऊपर आएगा उतना आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी उतनी चेतना विकसित होगी, जितना प्राण नीचे होगा उतना संसार में उसकी चेतना नीचे होगी। तो प्राण को नीचे के चक्कर से फिर नाभि चक्कर तक लाना है, फिर छाती के चक्कर तक लाना है, फिर कंठ के चक्कर तक लाना है, फिर आज्ञा चक्कर तक लाना है, और अंत समय आत्मा तो शरीर से निकलता है, वो अगर शरीर का ये कपाट फाड़ के निकल गया तो भगवत धाम जाएगा, अगर योगी पक्का है तो वैकुंठ जाएगा। और अगर आत्मा का जाना किसी और द्वार से हो गया तो अधोगति मानी जाती। तो योगी असल में क्या है, प्राण में आत्मा उसके, भाई हम आते हैं गाड़ी चाहिए आने के लिए, गाड़ी में आते हैं, अगर नदी से जाता है तो नाव में जाते हैं, तो ऐसे आत्मा को प्राणों में ऊपर ले जाना है, आत्मा को ऊपर ले जाना है, लेकिन प्राण उसका व्हीकल है, उसका जरिया है, उसका जिसको कहा वाहन है, प्राण रूपी वाहन को नीचे के चक्रों से आत्मा उसके अंदर ऊपर उठा के दोनों भ्रुवों के मध्य तक लाना है। ये अभ्यास योगी करते हैं जिनको षट चक्र भेदन उसका ज्ञान है, तो वहां लाना चाहिए भ्रुवों और मध्य प्राणम आवे सम्यक सम्यक ठीक तरह से, और फिर कह रहे सतम परम पुरुष उपायति देव्यम, वो तो उस परम पुरुष को जो पहले बताया है दिव्य पुरुष को उसको प्राप्त होता है, वहां जाके पहुंचता है। तो अर्जुन ने पूछा ये हमको समझ में नहीं आता है आप क्या कह रहे हैं, ये षट चक्र क्या है, तब भगवान उसका साधन बता रहे हैं, साधन ये है। नहीं अभी कहते हैं वो स्थान कौन बताता है कहां जाना है, यत अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यत्यवीत रागाः यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। भगवान कहते यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, उस अक्षर ओम, यहां अक्षर का अर्थ है ओम, वेदों में ओमकार का उच्चारण जो ऋषियों ने बोला है, यतियों ने बोला है, यति कहते हैं ऋषियों को सन्यासियों को, वीत राग त्याग जिन्होंने सन्यास ले लिया है, संसार में आसक्ति नहीं है, ब्रह्मचर्यम चरंती ब्रह्मचर्य का पक्का आचरण करते हैं, ये सब ध्यान योग के अंगों में आता है। तत्पदम संग्रहण प्रवक्षयी, वो उस परम पद को प्राप्त करते हैं। तो इस रास्ते में जाने के लिए ओम का उच्चारण करना है, यति बनना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और तब उस पद को प्राप्त करेंगे। बोला कैसे करें, उसका साधन क्या है, तो 12वें श्लोक में उसका साधन व्रत कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य, हृदय में नौ, शरीर में 9 द्वारे हैं, नौ द्वारे पूरे देही, ये तो सात द्वार तो मुख के इधर ही पड़े हैं, दो आंखें, दो नासिका, दो कान और एक मुख, दो नीचे मलमूत्र त्यागने के, ये नौ द्वार हैं। इन सबको संयम में बंद करें, इसको प्रत्याहार कहते हैं योग में। योग में प्रत्याहार में अपने सारे इंद्रियों को संयम में करना है, तो ये प्रत्याहार है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय में परमात्मा के ऊपर केंद्रित करें, इंद्रियों को संयम में और हृदय में मन को हृदय में परमात्मा के ऊपर केंद्रित करें। मूर्ध्यम्य आध्यात्म प्राणम, और प्राण को ऊपर ले जाए, मूर्धन कहते हैं सर को, सर के ऊपर कैसे हो कहते हैं मूर्धन, तो प्राण को ऊपर ले जाए। आस्तितो योग धारणम, ऐसा जो धारणा करे योग की, धारणा के बाद ध्यान आता है और ध्यान के बाद समाधि आती है, और धारणा का अर्थ होता है जैसे नदी की धारा बहती है जिसमें कोई रुकावट नहीं आती है, ऐसे चिंतन धारावाहिक होना चाहिए, तो ध्यान में भगवान आएगा, तब समाधि लग जाएगी। ये है ध्यान योगियों का। अब ये अंतिम श्लोक इस पंक्त इस भाग 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 भगवत गीता के आठवें अध्याय में, जहां तब करे क्या, अब क्या करे, वो कहते हैं ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म विहारन मामनो सम्रन य प्रयाति त्यजम देहम सयाति परमाम गतिम। कहते हैं ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ओम ऐसा उच्चारण करे जैसे ज्ञानी लोग करते हैं ओम, और ओम का उच्चारण करे लेकिन जोर से, विहारण, और चिंतन किसका करे, माम अनुचिंतन, भगवान कह रहे माम अनुसमर, मेरा सुमरण करे, उच्चारण ओम का करे और सुमरण मेरा करे। देखो यहां जब योगियों के लिए प्रभुपाद ने पुरुषम परम कह दिया, तो वहां लिखा क्या है कि ओम का उच्चारण करो या हरे कृष्णा का करो, कोई अंतर नहीं है। और ऐसे श्लोक है जिसके दो बार हरे कृष्णा मंत्र पूरा प्रभुपाद ने लिखा है, और फिर लिखा है हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करते करते आप नारायण का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, तो परम पुरुष में ये सब नरसिंह देव का ध्यान करो, ऐसा लिखा है। क्योंकि अभी पता नहीं है कि हमारा इष्ट कौन है, लेकिन ये सारे परम पुरुष है और दिव्य है, इनका ध्यान करो और जपो क्या, हरे कृष्णा। आश्चर्य लगता है, हरे कृष्णा जपना तो राधा कृष्ण का ध्यान है। बोला हरे कृष्णा तो सामान्य रूप से जपते जपते, अभी तो आपको पता नहीं, आप मानो के किसी घर में पूजा होती है नरसिंह भगवान की, तो नरसिंह की प्रति आ सकती है, किसी भगवान घर में या किसी महले में रहते हैं तो राम दरबार है तो राम के प्रति आसक्ति रही है, कहीं लक्ष्मी नारायण है तो लक्ष्मी नारायण के प्रति आसक्ति है, कोई बात नहीं। ये तो आपका सामाजिक मन में पहले भावनाएं उत्पन्न है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन करते रहेंगे तो समय आने के ऊपर आपको निर्धारित हो जाएगा कि हमें हमारे हृदय में कौन इष्ट का स्फूर्ति हो रही है। और फिर अगर राम के ऊपर आस्था पक्की होती है तो राम का ध्यान कर लो। तो ऐसे यहां प्रभुपाद ने लिखा है कि किसी भी विष्णु के स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसने पक्का निर्णय नहीं किया है, और ये ध्यान योगी की बात है। तो यहां कहते हैं उच्चारण भले ओम का करे, प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सिखाया, इसमें भी प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। और ऐसे ओम का उच्चारण करते हुए, मेरा अनुस्मरण करते हुए अगर वो देह त्यागेगा तो परम गति को प्राप्त करेगा। इसमें भी प्रभुपाद ने पूरा हरे कृष्ण मंत्र लिखा है तात्पर्य में, कि ओम का उच्चारण करो, या जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो दोनों में से किसी का भी उच्चारण करो आपको परम गति प्राप्त होगी। अब ये हो गया योग मिश्रित भक्ति, जो छठे अध्याय में उसमें भक्ति जोड़ने से योगी पक्का हो जाएगा, वैकुंठ तक जाएगा। अब शुद्ध भक्ति के दो श्लोक हैं, तुलना आत्मिक, जो सातवें अध्याय में, आठवें सातवें अध्याय में भगवान की शरणागति का जहां वर्णन किया है। तो आइए शुद्ध भक्ति का श्लोक पढ़ते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं शुल्भ पारथ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसमें शुल्भ लिख दिया, शुल्भ का मतलब बहुत आसानी से, सरलता से किसी को भी मिलता हूं, और योग में बहुत बड़ा परिश्रम था। तो तुलनात्मक कहते हैं शुद्ध भक्ति, अनन्य चेततः सततम, अनन्य और किसी का नहीं, न अन्य, कृष्ण कहे अन्य किसी का नहीं, यो माम मेरा, और किसी का नहीं मेरा। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो बहुत बहुत, उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं मेरा केवल कहता है, मेरा चिंतन करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, तो बहुत मेरा मेरा करता रहता है। और हम सामान्य पूछते हैं सबसे, अरे भाई हर पिता हम क्या कहना चाहता है कि बच्चा मेरा, मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी सेवा करे, मुझसे प्रेम करे। ये सच है कि झूठ है? आप भी माता पिता हो, आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे आपका आज्ञा का पालन करें कि नहीं करें, आपकी सेवा करें, आपसे प्रेम करें, नहीं करें, आपका क्या विचार है? और भगवान कहते हैं मैं जगत का पति पिता हूं, तो क्या पिता को अधिकार नहीं है अपने बच्चों को कहना कि अरे मेरी आज्ञा का पालन करो, गलत कह रहे हैं क्या? और हर पति समय कहता है कि मेरी पत्नी केवल मुझसे प्रेम करे, ये झूठ है क्या? हाँ, और भगवान जगत पति है, और ये सब जीव आत्मा संसार में शक्ति है, वो सब भगवान उनका पति है, तो फिर वो अगर कहता है मुझसे प्रेम करो तो कौन सा गलत कह रहा है? तो भगवान कहते हैं जो सततम नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, नित्य स, नित्य का मतलब दो शब्द, सततम बोला, सततम का एक अर्थ है सदा के लिए, धरती पे है तो भी, और आकाश में हवाई जहाज में जा रहा है तो भी, जल में है तो भी, सततम की परिभाषा ये है। और एक भाव नारद की ओर जाते हैं तो सततम का अर्थ आता है सतंत, स का मतलब सात, तंत का मतलब वीणा, जो गा के बजा के मेरा स्मरण करता है। ऐसा नहीं कि गुफा में बैठ के गली गली में गा गा कर हड़ताल मृदंग उठाकर और जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुमरम नित्य छ, और मेरा सुमरण, सुमरण का मतलब माला जपना, माला को संस्कृत में सुमरणी बोलते हैं, और सुमरण नित्य छ, नित्य का मतलब जैसे नित्य कर्म होता है, जैसे बुर्श करना रोज नित्य कर्म है, स्नान करना रोज नित्य कर्म है, ऐसे भगवान का सुमरण करना सबका नित्य कर्म होना चाहिए, ये नित्य कर्म होना चाहिए। नित्य का मतलब रोज नेम से, नित्य होता है नेम से, और सत्यम होता है सर्ज, सब जगह, सब जगह और नेम से। तस्याहम ऐसे लोगों को शुल्भ पारथ, हे प्रथापुरुष मैं आसानी से मिल जाता हूं, उसको कोई बहुत बड़ा संकट नहीं उठाना पड़ता। शुल्भ एक एक ही जगह भगवत गीता में सुलभ शब्द आया है, और कहीं शुल्भ शब्द है ही नहीं। सुलभ मिल जाता हूं, नित्य युक्त, फिर नित्य दोबारा नित्य युक्त, अब युक्त क्या है? नित्य युक्त योगिनः, नित्य मतलब सदा के लिए, नेम से, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ है, और योगी का मतलब, युक्त और योगी दोनों का एक ही अर्थ है, तो दो शब्द क्यों डाल दिए? युक्त का अर्थ भी योग है और योग का अर्थ भी योग है, दोनों का अर्थ है मिलना। तो भगवान से कैसे मिला रहे? बोला मेरी आज्ञा पालन से मेरी सेवा में लगा होता है। तो युक्त का यहां परिभाषा है सेवा और प्रेममयी सेवा, और योग का अर्थ हो जाएगा भक्ति योग, क्योंकि ये श्लोक भक्ति का श्लोक है, अनन्य भक्ति केवला भक्ति का श्लोक है। वो मिश्रित भक्ति का था योग से, और ये केवला भक्ति का श्लोक है, इसलिए भगवान से प्रेममयी सेवा में जो जुड़ा हुआ है उसको भगवान कहते हैं मैं सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। अब आगे का दूसरा भक्ति का श्लोक सुन लीजिए, 15वां। अब इसका फल भी बताते हैं, उसमें फल बताया परम गति को प्राप्त हो गया, कौन सी गति होगी पता नहीं, यहां सीधा बता दें माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम आपनोति महात्मनः संसिद्धं परमां गतः। माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म फिर वापस जन्म नहीं होता, कहां दुखालयम, ये दुख का आलय है संसार, जिसने संसार बनाया है वो कहता है ये दुखालय है। आलय किसको कहते हैं? जैसे जहां विद्या पढ़ाते हैं उसको विद्यालय कहते हैं, जहां दवाई होती है उसको औषधालय कहते हैं, चिकित्सालय कहते हैं, ऐसे जहां दुख भरे होते हैं उसको दुखालय कहते हैं। ये संसार कैसा है? बोला दुखालय। बनाने वाले ने कहा दुखालय और हम कहते हैं हमको यहां सुख चाहिए, अरे है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो इसलिए इस दुनिया में जिसको सुख आप मानते हैं ना, वो दुख के कम करने का नाम है। बहुत गर्मी हो रही है, पंखा लगाया सुखी हो गया, हमारा सुख क्या है? दुख को कम करने का नाम सुख है। सकार आत्मा आनंद सिर्फ आत्मा के स्तर के ऊपर है, संसार में नहीं है। और दूसरा विशेषण क्या संसार का दिया? अशाश्वतम, नित्य रहने वाला नहीं है, कोई चीज यहां नित्य नहीं, शाश्वत नहीं है, अनित्य है, आज है कल खत्म, कुछ मालूम नहीं है कि अचानक सब कुछ समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं किसी वक्त भी। और ना अपनावंती महात्मा, ये महात्मा जो हैं जो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, फिर समसिद्धि, उसको सम्यक सिद्धि हो जाती है, सम्यक का मतलब परिपूर्ण सिद्धि हो जाती है, और वो मैं परम गति को, परम गति का मतलब भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान कहते हैं अब यहां ये दो श्लोक भक्ति के थे, और 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये श्लोक योग मिश्रित भक्ति के थे, और दो शुद्ध भक्ति के थे। अब तुलना की जा रही है भौतिक जगत की भगवान के जगत से, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना की जा रही है। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तेनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा के लोक से लेकर इस भूमंडल तक, ऊपर के सात लोकों की बात हो रही है, भूर भुव स्व, स्व का मतलब स्वर्ग, भूर भुव स्व, जनलोक तप मरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक जहां ब्रह्मा रहता है, वहां जाओ ब्रह्मा तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से वापस आना पड़ता है, स्वर्ग से जाके तो वापस आना ही पड़ता है, कोई स्वर्ग में रह नहीं सकता, जितनी कमाई की है पुण्य है उतने दिन स्वर्ग में रहेंगे, क्षीण पुण्य मृत्यु विषमति, और वहां पुण्य पूरे हुए वापस धरती के ऊपर आना पड़ेगा। ये तो स्वर्ग की बात है, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा के लोक से लेकर यहां तक और कोई छोटी चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो जीव है, अगर पुनरावृत्ति नु अर्जुन है, अर्जुन उनको पुनरावृत्ति होती है, वापस आते रहते हैं। अब तुलना करते हैं, माम उपेत्य, जो भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाते हैं, जो वैकुंठ में आ जाते हैं, जो गोलोक धाम में मेरे पास आ जाते हैं, पुनर्जनम न कुंते पुत्र, उनको फिर दुखालयम अशाश्वतम संसार में नहीं आना पड़ता। तो मानो अर्जुन ने पूछा कि ये कैसे आते जाते हैं, ये जो आते जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक के आप बात कर रहे हैं ये कैसे हैं? तब भगवान इसका उत्तर देते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांतम त्यो रात्र विदो जना। अब कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है सहस्र का, अर्थ होता है हजार, हजार चतुर्युगियां बदलती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इसका मतलब कोई बड़ा जीवन मिले और भगवान नहीं मिले तो कोई लाभ नहीं, वहां से तो वापस ही आना पड़ रहा है। छोटा जीवन हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए, जैसे अभी मानव जन्म 100 साल का है और इसमें भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाए वो अच्छा है, हजारों सालों तक जिए, हजारों जुगों तक जिए, लेकिन वापस भगवान की प्राप्ति नहीं हो तो क्या लाभ हुआ। तो ये हजार चतुर्युगियां बदलती है, इतना ब्रह्मा जी का दिन है और इतनी बड़ी रात है। और अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्त सर्वाह प्रभवन्ते अहर आग में, अहर कहते हैं दिन को, निशा कहते हैं रात को, अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब प्रलय के समय में जो दिखते नहीं है, सोए हुए हैं, व्यक्ताद सर्वा, सारे व्यक्ति जाग जाते हैं, और कब प्रभवन्ते, प्रभव का मतलब है सृष्टि करना, अहर आग में जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तब सारे उठ जाते हैं नींद से, और रात्रे आग में प्रलयन्ते, और ब्रह्मा जी की रात आती है सब सो जाते हैं, कितने दिनों के लिए, हजार चतुर्युगियों तक। तत्रैवक्य संयते, उसके बाद वो, इसको वैसे समझना है तो सरलता से ऐसे समझे, अब बरसात की मौसम आ गई ना, अब कहीं भी देखो अपने आप घास उग गया, चारों ओर हरियाली हो गई, किसी ने घास डाला नहीं, अपने आप कैसे उग गया, ये बीज पहले से पड़ा था गत वर्ष का, बीच में सर्दी आ गई, गर्मी की मौसम आई तो कुछ भी नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे बरसात आई सब हरियाली अपने आप उग गया गई। तो ऐसे हम सब ब्रह्मा जी की रात को सो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है, प्रलय होती है, और ब्रह्मा जी उठते हैं, हम सब उठ जाते हैं, जहां काम छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। इसको इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, एक प्रलय होती है जो नित्य है, रात को सो जाते हैं ना वो रोज की प्रलय है, रात को 8 घंटे सोते हैं ना तो घर का पता नहीं, सामान का पता नहीं, पुत्र का पता नहीं, भाई पति किसी का भी पता नहीं, आभूषण का पता नहीं, मरे के समान है, ये रोज की प्रलय है, सोना रोज की प्रलय है। ऐसे ब्रह्मा जी के सोने को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, नैमित्त का मतलब नैम से, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो छोटी प्रलय होती है और हम सब सो जाते हैं, और जैसे हम रात को सोते हैं सुबह उठते हैं जहां काम छोड़ा है वहां से शुरू करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी जब उठते हैं जो जीव जो जिस जूनी में था वहां से अपना काम आगे शुरू करता है। अब कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सृष्टि कैसे होती है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की बात हो रही है। भूत्वा भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रि आगवे अवश्य पारथ प्रभवन्ते हर आग में। इसमें एक शब्द है अवश्य, अवश्य का मतलब हमारा बस नहीं चलता, हमारा बस नहीं चलता, ब्रह्मा जी सो गया तो हमको सोना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे है कि ड्राइवर सो गया तो सारे पैसेंजर को सोना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, पैसेंजर भले सब सो जाए, ड्राइवर सोया तो सभी सो जाएंगे, तो ये ब्रह्मा है ड्राइवर ये सारे संसार का, वो सो गया तो सब अपने आप सो जाएंगे, किसी को सुलाने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो भूतवा भूत ग्राम, ग्राम का मतलब एक होता है गांव का गांव, इसका मतलब जीवों के समूह का समूह, हरेक जोनी के सारे जीव भूतवा भूतवा दोबारा अगेन प्रलियते, रात को सो जाते हैं प्रलय होती है और रात्रि आग में, और जब रात आती है तो सो जाते हैं, अवश्य पारथ प्रभवंते अर आग में, हे प्रथा पुत्र जब दिन आता है तो कान से पकड़ के उठाया जाता है। अवश्य का मतलब है बस नहीं चलता है उनका, कान से पकड़ के उठाया जाता है, उठो अब खाली करो ये तुम्हारी किराए की जगह खत्म। जैसे किसी को जबरदस्ती उठाया जाता है, ब्रह्मा जी का दिन आया तो कान से पकड़ के सबको उठाया, जहां काम छोड़ा था अपना काम चालू करो। तो अवश्य का मतलब है अपने आप उठाया जाता है, फिर सो नहीं सकते, वो वहां का नेम है। तो इस सृष्टि, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, इसको विसर्ग कहते हैं। ये तो निरंतर ऐसे होती रहती है। अब भगवान इसकी तुलना करके कह रहे हैं, अब तुलना इसकी देख लीजिए। परस्तस्मात् भावो अन्यो, परस इससे परे, जहां नहीं मरना पर सोना नहीं पड़ता है, जागना नहीं पड़ता है, बार बार मरना जीना नहीं पड़ता है, परस्तस्मात् इससे आगे भावो अन्यो, अन्य भाव है, अन्य लोक है, अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, ये अव्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे सनातन है। ये भगवान अपने धाम की थोड़ी चर्चा कर रही हैं, जहां जीव होते हैं। ये ब्रह्मा जी के सोने के साथ सोना पड़ता है, फिर जागता है तो कान से पकड़ के उठाता है, ये तो जब तक इस संसार में तब तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इससे परे एक और भी स्थान है, और यहां यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्यु न विनश्यते, जब सबका विनाश हो जाता है तब भी उस जगत का विनाश नहीं होता, वो नित्य निरंतर रहता है। ये भगवान जीव आत्मा की अमरता और अपने जगत की शाश्वता का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ प्रलय होती है, लेकिन भगवान के धाम में प्रलय नहीं होती है, वो नित्य शाश्वत है। 21वें श्लोक को पढ़ते हैं, अब उसकी परिचय देते हैं। अव्यक्तो अक्षरति उक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर इति उक्तस, जिसको वेद अव्यक्त कहता है, हमारी पहुंच से दूर है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। तमाहु परमां गतिम, और उसी को परम गति कहते हैं। यम प्राप्य निवर्तन्ते, उधर जाने के बाद फिर वापस मृत्यु संसार में आना नहीं पड़ता। तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। इसका अर्थ ये है, जब तक इस संसार में आते जाते रहेंगे, मृत्यु और जन्म, ब्रह्मा जी का रात और दिन, प्रलय और फिर सृष्टि, तब तक तो ये चक्कर चलता रहेगा। जैसे भगवान के धाम चले गए भक्ति करके, तो फिर वापस जन्म में के मरण के चक्कर में आना ही आना पड़ेगा। तो एक प्रश्न फिर उठता है, फिर उधर क्या होगा, बंद करूं ये ला रहे बंद करने के लिए, बोलो क्या, बोलो जल्दी करो, मैं देख रहा हूं चिट्ठी जब आती है तो मैं समझता हूं यमराज आया। हरे कृष्णा, इसको तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो ऐसे रहने दो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, कल यहां से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।